नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्पेन स्थित कपड़ा कंपनी टेम्पे ग्रुपो इंडिटेक्स के क्रिसमस से पहले राज्य में उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। बनर्जी अभी स्पेन की 12 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार कंपनी को अन्य सभी सहायता के अलावा रियायती दाम पर 100 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराएगी। बनर्जी ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कपड़ा उद्योग की प्रमुख कंपनी टेम्पे ग्रुपो इंडिटेक्स अपने परिचालन का विस्तार कर रही है। वो क्रिसमस 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने के लिए विनिर्माण को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित करने के लिए निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर रहे हैं। स्पेन यात्रा पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। चीन के कारखानों ने गति पकड़ ली है और अगस्त में खुदरा बिक्री में भी तेजी आई है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे वैश्विक महामारी के बाद की स्थिति से उबर सकती है। हालांकि रेस्तरां तथा दुकानों में व्यस्त गतिविधि के बावजूद आंकड़ों में सभी महत्वपूर्ण संपत्ति क्षेत्र में लगातार कमजोरी दिखी। रियल एस्टेट डेवलपर सुस्त मांग के कारण कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रियल एस्टेट निवेश में अगस्त में सालाना आधार 8.8% की गिरावट आई। साल की शुरुआत से ही गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। बैंकों पर बोझ कम करने के लिए पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना या केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार देर रात कहा कि अधिकतर उधारदाताओं के लिए आरक्षित आवश्यकता में शुक्रवार तक 0.25% अंक की कटौती की जाएगी। केंद्रीय बैंक के अनुसार आर्थिक सुधार की नींव को मजबूत करने और उचित तथा पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए इससे उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 4.6% बढ़ी, ऑटो बिक्री 5.1% बढ़ी, जुलाई में खुदरा बिक्री में मामूली 2.5% की वृद्धि हुई थी, औद्योगिक उत्पादन 4.5% वार्षिक गति से बढ़ा, अप्रैल के बाद औद्योगिक उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है, जुलाई में 3.7% से अधिक बढ़ा था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को रुपया शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में रहा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के बीच सकारात्मक घरेलू बाजार का लाभ रुपये को मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा स्फीति आंकड़ा जारी होने के बाद डॉलर मजबूत हुआ, आंकड़ा उम्मीद से अधिक बताया गया है और घरेलू इकाई पर इसका असर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.02 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 83.07 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर आ गया। ये पिछले बंद भाव से 4 पैसे की गिरावट है। बृहस्पतिवार को रुपया 83.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इसी बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15% की गिरावट के साथ 105.28 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.95% की बढ़त के साथ 94.59 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजारों में तेजी तथा विदेशी प्रवाह के बीच स्थानीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार 11वें दिन तेजी रही। BSE 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 255.46 अंक चढ़कर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 67,774.46 पर पहुंच गया। NSE निफ्टी 70.05 अंक बढ़कर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 20,173.15 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, विप्रो, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लाभ में रहे। वहीं एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर नुकसान में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 294.69 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.82% की बढ़त के साथ 94.47 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GSTAT की 31 पीठें अधिसूचित की हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। GSTAT की राज्य स्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा। वर्तमान में कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है। मामले निपटने में लंबा समय लगता है क्योंकि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है। अधिसूचना के अनुसार गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेशों दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव में जीएसटीएटी की दो पीठें होंगी, जबकि गोवा तथा महाराष्ट्र में कुल मिलाकर तीन पीठें स्थापित की जाएंगी। कर्नाटक और राजस्थान में दो दो पीठ जबकि उत्तर प्रदेश में तीन पीठ होंगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुल मिलाकर दो दो जीएसटीएटी पीठ होंगी, जबकि केरल तथा लक्षद्वीप में एक पीठ होगी। सात पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी न्यायाधिकरण देकर मामलों को सुलझाने के लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये कर विवादों के निपटान के लिए एक निष्पक्ष, विशेषज्ञ तथा कुशल मंच प्रदान करते हैं। पहले चरण में सरकार ने 31 पीठें अधिसूचित की हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।